इंजॉय रीडिंग, जो बोएगा सो कटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। कभी इस पैलेस के दरवाजे से बहू और पोते को धक्के मारकर निकाला था और आज इस पोते का इंतजार कर रही थी कि काश वो दिख जाता, जिसके लिए पूरे रास्ते कांटे बिछाए थे, आज अपने लिए बिछे हुए फूल भी कांटों से ज्यादा दुखदायी लग रहे थे। दरवाजे पर पूरे स्वागत की तैयारी होने के बावजूद भी दिल यही कह रहा था कि कोई उन्हें धक्के मारकर यहां से निकाल दे, ताकि वो महल के अंदर ना जा सके। बीते दिनों की स्मृतियां और अपने किए हुए कुकर्म इस तरह से खुद को ही दंश रहे थे कि ये कहना मुश्किल था कि किसकी जुबान ज्यादा है, वैशाली की उपस्थिति की या अपने कुकर्मों की। वो अंतिम दिन था जब अखिल प्रताप इस महल में दिखे थे, वरना शत्रुपा देवी तो उन्हें शमशान घाट से ही बाहर निकालने के मन में थी, लेकिन समर्थ सिंह ने रोक दिया था। नहीं बुआसा, इस वक्त नहीं, इस वक्त सभी देख रहे हैं, अच्छा खासा तमाशा हो जाएगा। पर वो मेरे बेटे को, शत्रुपा देवी बोल रही थी, आप तो बस यही चाहती हैं ना कि विक्रम भाईसा को मुखाग्नि दे, तो विक्रम भी उसके साथ ही हैं, समर्थ सिंह ने शत्रुपा देवी को समझाया, जबकि विक्रम अब चुपचाप वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए थे। एक 9 साल के बच्चे के अंदर कितनी हिम्मत ही होती है। अखिल प्रताप के बार बार बुलाने पर भी विक्रम नहीं आए तो अभिमन्यु प्रताप का अंतिम संस्कार अखिल प्रताप ने किया। सुगंधा देवी के लिए भी जब विक्रम को लकड़ी थमाई गई तो उसके पहले ही विक्रम प्रताप भाग खड़े हुए थे। अपने पिता को चिता की अग्नि में जलता हुआ देखकर उनकी लपटे विक्रम प्रताप को विचलित कर रही थी। तब किसी तरह से अखिल प्रताप ने एक बड़े भाई का कर्तव्य निभाते हुए अपने बाहों में उनको पकड़ा और जबरदस्ती उनके साथ अपनी छोटी माँ को मुखाग्नि दी। जिस बच्चे से जीवन भर जलती रही थी, उसी बच्चे ने आज उनकी चिता को प्रज्वलित किया था। इसके बाद सभी पैलेस लौट आए थे। रात होते होते चिता की अग्नि तो शांत हो गई थी, लेकिन कई लोगों के मन में दुख की जो अग्नि जल रही थी वो शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन इन सब के बीच में शत्रुपा देवी के मन में तो दूसरी ही अग्नि चल रही थी। ऐसा नहीं था कि उन्हें अखिल प्रताप से प्रेम नहीं था या उन पर प्रेम आता नहीं था। अखिल प्रताप के कार्य, उनके चेहरे, उनके व्यक्तित्व से जितना अभिमन्यु प्रताप झलकते थे, उतना तो विक्रम से नहीं झलकते थे। अखिल प्रताप ने अपने पिता का पूरा नयन नक्श चुराया था। वो अपने पिता की कार्बन कॉपी थे, जबकि विक्रम कुछ कुछ अपनी माँ की तरह भी दिखते थे। पर शत्रुपा देवी तो अखिल प्रताप से अपने मन में एक पैर की गांठ बांधे बैठी थी, जो कि उनसे नहीं, उनकी माँ से था। उन्होंने सुगंधा देवी का विवाह भी अभिमन्यु प्रताप के साथ इसी वचन के साथ कराया था कि वो उनके बेटे को अपना समस्त राजपाट देंगी। अब उसे वचन को निभाने का अवसर आ गया था, परंतु अब तब तक वो शांत थी जब तक कि अभिमन्यु प्रताप और सुगंधा देवी के क्रियाकर्म निपट नहीं जाते। अखिल प्रताप ने अंतिम संस्कार किए थे तो रीति रिवाज भी उनको ही करने थे, इसलिए चुप थी। पर उनकी ये चुप्पी सबके दिल को डरा रही थी। किसी के लिए आने वाले तूफान का इशारा थी तो किसी के लिए सब कुछ मिट जाने का इशारा थी। और ये थे विक्रम प्रताप के ननिहाल वाले, साथ में रतनगढ़ के राजा रतन सिंह। कहीं ना कहीं वो अपनी बेटी आरती के लिए अब पुनः राजगढ़ में उसका भविष्य विक्रम प्रताप के रूप में देख रहे थे। पर अखिल प्रताप उन्हें अपने रास्ते का रोड़ा दिखाई पड़ रहे थे। सब कुछ जब भली भांति संपादित हो गया तो अंतिम दिन इसी महल के बीचों बीच बड़े से हाल में एक बैठक लगी थी, क्योंकि वकील साहब ने यह कहा था अभिमन्यु प्रताप की वसीयत खोलने का यही उचित दिवस था। पर अभिमन्यु प्रताप ने अपनी वसीयत बनाई ही क्यों? इस वसीयत को उन्हें इसकी जरूरत पड़ी ही क्यों? शत्रुपा देवी तो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। आप हमें वसीयत तो पढ़ने दें, उसके बाद तो सब कुछ साफ हो जाएगा, वकील साहब बोले। मजबूरी में शत्रुपा देवी वहां पर बैठी थी। समर्थ सिंह, पुलकित सिंह के साथ साथ बुंदेला परिवार के सभी रिश्तेदार और रतन सिंह भी थे। अखिल प्रताप के ननिहाल से उनके मामा जी अंतिम क्रियाकर्म में शामिल होने आए थे, पर वो अब कलकत्ते लौट चुके थे। नाना विशंभर मिश्र का देहांत हो चुका था। जैसे जैसे अभिमन्यु प्रताप की वसीयत पढ़ी जा रही थी, सबके चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। उन्होंने अपने वसीयत में साफ लिख दिया था कि हमें इस मामले में किसी पर विश्वास नहीं है कि हमारे बाद हमारे पुत्रों में भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसलिए हम खुद अपने दोनों बेटों को अपनी संपत्ति के बराबर अधिकारी बना रहे हैं। पर राजगढ़ का पुराना महल, जिसमें किसी की भी रुचि नहीं है, और हमारी मासा भी यही चाहती हैं कि हमारे राज परिवार का साया भी उसे पड़ना पड़े, तो वो पूरी तरह से हम अपने बेटे अखिल प्रताप को दे रहे हैं। साथ में अपना वो कॉटेज जिसमें कि हम अपूर्वा के साथ रहा करते थे, वो भी भेंट स्वरूप में अखिल प्रताप को देते हैं। इसके बदले में दिल्ली स्थित हमारे दो कोठियां हम विक्रम प्रताप के नाम लिखते हैं।
पर इस महल पर दोनों भाइयों का पूर्ण रूप से बराबर अधिकार रहेगा, जिससे कि न्याय के पलड़े पर ये बंटवारा बराबर हो। अभिमन्यु प्रताप की वसीयत थी या फिर कोई एटम बम। बड़ा ही कोहराम बचा था उस दिन। शत्रुपा देवी तो अपने आपे से बाहर हो गई थी। विक्रम तो इन सब चीजों को समझने लायक नहीं थे, पर अखिल प्रताप सब कुछ समझ रहे थे। कॉटेज की चाबी तो उसी वक्त अखिल प्रताप को मिल गई थी, लेकिन बाकी चीजों के लिए शत्रुपा देवी ने यह कहते हुए इस वसीयत को मानने से इनकार कर दिया। अभिमन्यु प्रताप, इस संपत्ति को बांटने वाले होते कौन है? अभी हम जीवित हैं तो ये सारी संपत्ति मेरी है। और उन्होंने खुद अपने हाथों से धक्के मारकर अखिल प्रताप को इस महल से निकाला था। सब रोकते रह गए, लेकिन शत्रुपा देवी ने किसी की नहीं सुनी। और आज शत्रुपा देवी खुद कुछ बोलने लायक नहीं बची थी। समय ने अपना बदला ले लिया था। जिन लोगों को इस कहानी का इंतजार रहता है, जरा इस कहानी के रीड काउंट को बढ़ाने के लिए अपने फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर अपने पोस्ट पर शेयर जरूर कीजिए। कमेंट बराबर करते रहिए। हर हर महादेव।